संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र का ये नेक्स्ट पार्ट है। हरी सो जग वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। प्रथम श्रोता आप हैं श्री राधे श्याम सीताराम, दूजो हैं रसखान। आपके सभी भक्तों संतों के चरणों में प्रणाम। श्री राधे श्याम सभी भक्तों को प्रणाम। तो रामानुजाचार्य जी के लिए वहाँ पे सब तरफ एक षड्यंत्र बना दिया गया कि इनको मारना है। उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा कि इनके खाने में विष डाल दिया जाए, लेकिन ये चंद लोगों के यहाँ से भिक्षा लेते हैं और उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल था। तो किस किस तरीके से वहाँ के जो वैष्णव थे, ब्राह्मण थे, पंडा लोग थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को पटाया, बहुत लालच दिए कि आपको विष देना है जो भिक्षा करने के लिए आते हैं। और वो पांच ही लोग थे जिनके यहाँ पे भिक्षा करने जाते थे। इनका नियम था कि वहाँ से भिक्षा लेते थे वो, ये गंगा जी में धोते थे और फिर उसको ले लेते थे। आज जब ये उनके द्वार पे गई, जो गृहिणी थी वो इनको भिक्षा दे करके रोने लगी, कोने में जाकर रोने लगी। इन्होंने देख लिया, अपनी दिव्य दृष्टि से इन्होंने देख लिया कि भिक्षा में विष है। ये वाए और वो भिक्षा जल में प्रवाहित कर दी। इन्होंने भूखे रही उस दिन, इन्होंने कुछ नहीं खाया। उनका भंडा फोड़ हो गया, मंडा फोड़ हो गया। तो ये बात पहुंच गई इनके गुरुदेव के पास। इनके गुरुजी आए, तो गुरुजी ने आए तो ये गुरुजी को लेने के लिए ही जब रेत में अपने सारे शिष्यों के साथ में गए, तो जब सामने गुरुजी खड़े हुए थे, इन्होंने सामने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम किया तो गुरुजी ने खड़े रहे, ऐसे बोले नहीं। तप्त रेत थी, बड़ी ऐसी रेत कि पैर भी बड़ा मुश्किल से पड़े, और ये साष्टांग दंडवाद करके लेटे हुए थे। ऊपर से कुछ कोई इनके पास वस्त्र नहीं था, तो रेत पे कैसे होगा कि जलन कितनी होगी। तो गुरुजी खड़े रहे ऐसे, कुछ नहीं बोले। तो एक वैष्णव थे, उनसे सहा नहीं गया और वो बोलने लगे कि कितने निष्ठुर हो गुरुदेव, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको। और वो इनको अपनी पीठ पे, जैसे लेटे वो और इनको तुरंत अपनी पीठ पे रख लिया कि हम लेट जाएंगे, मतलब हमारे जो हैं गुरुदेव को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो उठे और उस जिसने ये काम किया था उसको छाती से लगा लिया, बोला मैं ऐसा ही एक वैष्णव चाहता था जो इसकी देख रेख करे, और जाओ आज से ये तुम्हारी रसोई का कार्यभार संभालेंगे, अब आपको खतरा नहीं होगा। तो इनको भेज दिया गया। ये गोष्ठीपूर्ण जी इनके गुरुदेव थे जिन्होंने मंत्र दीक्षा दी थी। तो ये चले आए वैष्णव, इनकी सेवा करने लगे, फिर रसोई का कार्यभार आया। अब उन लोगों ने फिर एक्टिव हुए वो लोग कि कोई और षड्यंत्र करे, कैसे इनको मारा जाए, मारना तो है। उन्होंने चरणामृत में एक दिन विष मिला दिया, भगवान के चरणामृत में विष। अब ये रामानुजाचार्य जी को जब हाथ में लिया, उन्हें पता चल गया विष है चरणामृत में। पर चरणामृत जो इनको दिया गया विष वाला चरणामृत था, पर ये तो भगवान का चरणामृत है, ये तो पान करना ही है। तो इन्होंने भगवान का किया तो आपका चरणामृत है, विष है चाहे जो भी है, मेरे लिए तो चरणामृत है प्रभु, मैं तो पान करूँगा। इन्होंने चरणामृत पी लिया। चरणामृत पिया तो वैसा ही हुआ जो मीरा जी के साथ में, इनको तो चरणामृत वही अमृत का ही काम किया इनके लिए। तो उनकी आँख खुल गई, उन्होंने देखा हमने विष दिया है इनको चरणामृत में, और इन्होंने वो चरणामृत पी लिया। ऐसा कि एक घूंट अंदर चली जाए तो आदमी मर जाए, और इतना विष भी ये पान कर गए। तो वो साक्षात चरणों में लेट गए, रोने लगे और प्रार्थना करने लगे, क्षमा कर दो महाराज, गुरुदेव क्षमा कर दो और हमें भी अपनी कृपा पात्रता प्रदान करो अपनी कृपा की। तो ये तो भगवान स्वरूप थे, इन्होंने उनको क्षमा किया और फिर सबको इन्होंने दीक्षित किया, संपन्न पंडाओं को, वो इनके अनुयायी हुए। इसके बाद ये वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए फिर से पूरे देश में ये निकल पड़े, और जो जो लोग मिलते रहे, ऐसे ऐसे लोग आए कि जिनसे एक एक आदमी से 17-17 दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा, उनको पराजित करके फिर अपना शिष्य बना, फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी यात्रा में ये इनकी दिग्विजय यात्रा चल रही थी, देश के हर कोने कोने में ये पहुँच पहुँच के, जहाँ पर भी विमुख लोग थे जो भक्ति को नहीं मानते थे उनको ये भक्ति मार्ग पे लेके आ रहे थे। तो ऐसा ही हुआ, एक बार इनको पता चला कि इनके जिस तरफ ये गए हुए थे कि उधर इनके दो भक्त लोग रहते हैं, दो वैष्णव हैं, एक तो बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब थे, बहुत निष्किंचन, उनके पास कुछ था नहीं। तो इन्होंने पहले अपने जो अमीर थे उनके यहाँ पे अपने कुछ वैष्णव लोग, अपने शिष्यगणों को भेजा कि बताओ गुरुदेव आ रहे हैं, तो उनके यहाँ पे भोजन पान की व्यवस्था हो, उनसे मिलेंगे। वो गए तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, गुरुजी आ जाएंगे, बढ़िया बात है, ठीक है भेज दो आप। उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया वैष्णवों का। गुरुजी के लिए उन्होंने पकवान बनाने शुरू करवा दिए कि गुरुजी आएंगे तो भाई ठीक है। ये वहाँ लौटे, बताया इन्होंने, सुन पहले गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारा क्या सत्कार हुआ वो बताओ। बोले महाराज हमारा कोई सत्कार नहीं हुआ है। वो समझ गए कि वो सही नहीं है, जो वैष्णव का और ब्राह्मण का सत्कार करना नहीं जानते उनके यहाँ हम पैर भी नहीं रखेंगे। बोले उनको खबर करो अभी, जो निष्किंचन थे जिनके पास कुछ है ही नहीं, उनके यहाँ पे गए। उनके यहाँ पे गए तो वो पहले तो इनको देख के ही खुश हो गए, उनके पास कुछ नहीं था घर में देने को। उन्होंने इनको जल पिलाया, ऐसे करने लगे कहाँ बैठा दें इनको, क्या सेवा कर लें। तो ये खैर आ गए कि गुरुजी हैं आएंगे तो भाई भेज दो, बुलाओ गुरुजी को। पूछा उन्होंने, बोला जी महाराज उनके तो भाव ही अद्भुत थे, वो तो ऐसा लग रहा था कि अपना हृदय चीर के रख दें। बोला उनके यहाँ चलते हैं, पर उनके यहाँ भोजन सामग्री कुछ नहीं थी। जिस दिन ये आ रहे थे बहुत सारे शिष्यगण थे साथ में, इतने लोगों के लिए भोजन पान कहाँ से आए, घर में कोई व्यवस्था नहीं है। तो पत्नी को लगा कि कैसे इंतज़ाम किया जाए, तो वो एक वणिक थे, एक बनिया थे, वो जो ये भक्त थे रामानुजाचार्य जी के, इनकी पत्नी के ऊपर मोहित थे, वो काम वासना से बहुत ही मतलब वो ग्रसित थे, तो इनको देख करके काम वासना जागृत होती थी। उन्होंने कई बार टोका भी होगा उनको, उसके दिमाग में आ गया कि वो अपनी काम वासना की पूर्ति कर ले मुझसे, और भाई मुझे लेकिन इनके भगवान के वैष्णव लोगों के लिए, भगवान के संत लोगों के लिए मुझे कुछ भी दे दें तो मैं अपना शरीर भी बेच दूंगी इनकी सेवा के लिए। वो उसके पास गई कि तुझे जो करना है कर लेना भाई, मुझे लेकिन इतना सामान दे दे कि मैं मेरे घर में जो वैष्णव आए उनका मैं भोजन करा सकूं। तो इसने उसने बोला जितना लेना उतना ले ले, तो उठा ले जा, जितना चाहिए उतना तो कोई वो नहीं है। तो वो जितना राशन में इतने लोगों का वो हो जाए वो उतना लेके आई, घर में उसने पूरे पकवान वकवान बनाने शुरू किए बनाए। जब वो बनाई रही थी तब उसका पति आ गया, पति वो संतों को देख के गुरुजी को देख के बड़ा प्रसन्न था, वो प्रसन्न हुआ बहुत अपनी पत्नी को, वो भी चिंतित था, वो भी पैसे वैसे का इंतज़ाम करने का ही उससे कुछ ही नहीं मिला। उसको घर में देखा उसने पत्नी बना रही, उससे पूछा कहाँ से लाई, उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे जो बनिया हैं उससे लेके आई हूँ, वो काम आ सकते हैं मेरे में। तो वो मतलब गदगद हो गया कि वाह मेरी पत्नी भी संत सेवा के लिए अपने को बेचने के, वो इतनी सती पति व्रता स्त्री अपने आप को बेचने को तैयार हो गई आज संत सेवा के लिए। तो उसने उसके चरण स्पर्श किए कि तू सही में मतलब मैं तेरे चरणों का धूल भी अपने सर पे लगाऊं कि तू अपने आप को बेचने को तैयार होगी। खैर इन्होंने सब प्रेम सबको भोजन कराया, भोजन करने के बाद तो प्रसाद ये खुद पाने के लिए थे, इन्होंने थोड़ा सा प्रसाद महाप्रभु जी ने इनको दिया। तो इन्होंने कहा रामानुजाचार्य जी से गुरु जी से कि प्रभु एक संकोच है हमारे मन में, बताओ क्या है। इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी स्त्री ने एक वणिक से ये बोल के वो धन और ये सब लेके आई थी वस्तु कि इसे उसकी काम वासना की पूर्ति करनी है, और वो तो ये कहने लगे ठीक है। इन्होंने कुछ अपना प्रसाद उस वणिक के लिए दिया कि ठीक है ये चरणामृत दे देना उसे, ये प्रसाद दे देना और चले जाओ। उन्होंने आज्ञा दे दी, गुरुजी ने आज्ञा दे दी, तो फिर क्या था, ये अपनी पत्नी के साथ उस वणिक के घर चले गए। इन्होंने कहा कि ठीक है मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, जब तुम आ जाओगी तो साथ में चलेंगे, गुरुजी ने आज्ञा दे दी अब तो कुछ। तो वो गई, जाते ही उसने वणिक खुश हो गया देख के आ गई है, तो उसने चरणामृत दिया, चरणामृत पान किया, भगवान का उसने प्रसाद खा कि पहले ये खा लो। उसने खाया, खाते ही उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई है, इतनी साधुओं की वो और रामानुजाचार्य जी ने प्रसाद दिया हुआ है उसकी बुद्धि बदल गई, उसके अंदर से जो काम विकार थे सारे नष्ट हो गए, और वो देखने लगा हाय माँ, उसने माता कहा उसको कि तू तो माता स्वरूपणी है, तू साधु सेवा के लिए मेरे यहाँ से अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो गई और मैं नीच तेरा फायदा उठा लूँ। वो कहने लगा तू सही में माता स्वरूप है, मुझे क्षमा कर, मेरे अंदर तो सही में जो क्या वो थे, मैं तो नरक में भी मुझे जगह नहीं मिलेगी, मुझे उसकी बुद्धि इतनी पवित्र होगी। तो उसने कहा कि मुझे भी अपने गुरुजी से मिलवा दो, बस मेरे पे इतना करो। ये गुरुजी के पास लेके आए, रामानंदाचार्य जी ने उनको दीक्षित किया, तो उनका भी उद्धार कर दिया उन्होंने, उनको दीक्षित किया, भगवान का मंत्र दिया और चले आए। तो ऐसे इन्होंने इनका उद्धार किया। इसी दिग्विजय में बहुत सारे लोगों का उद्धार करते हुए रामानुजाचार्य जी चल रहे थे। इसी बीच एक क्या हुआ, एक राजा थे, उन्होंने वो शिवजी के उपासक थे, उन्हें लगा कि भाई रामानुजाचार्य जी को अगर हम परास्त कर दें हमारे लोग और ये हमारे मत में मिल जाएं और ये शिव भक्ति का प्रचार करें तो पूरे देश में शिव भक्ति छा जाएगी। इस उद्देश्य से उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए अपने यहाँ पे उनको बुला लिया। पर उनका उन्होंने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया था कि यदि रामानुजाचार्य जी जीतेंगे तो हम उनको मार देंगे, हार गए तो हमारे मत का प्रचार होगा। तो इनके जो शिष्य थे कुरेश जी ने बोला कि प्रभु जी आप मत जाओ, वो बहुत दुष्ट हैं हम जानते हैं, आप यहाँ से चले जाइए, हम जाएंगे। तो वो और महापूर्ण जी ये दोनों उसके राजा के यहाँ पे गए। शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में तो पराजित कर ही नहीं सकते थे उनको, कुरेश जी को और महापूर्ण जी को। तो आखिर में कहाँ हुआ, उन्होंने बोला कि शिव सबसे बड़े हैं। वैसे तो भगवान शिव सबसे बड़े हैं ही, इसमें तो भगवान विष्णु और शिव तो बड़े ही हैं, वो एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं होता शिव और विष्णु में। ये मूर्खता है हम लोगों की कि भेद करने लगते हैं। तो शिव बड़े हैं, शिव यानी रुद्र बड़े हैं, रुद्र तो बड़े ही हैं, कोई उसमें कोई वो ही नहीं है। तो उन्होंने शिव बोला, और शिव होता है तोलने का एक बाट भी, तोलने की एक मतलब एक बाट है तोलने का, ऐसे ही द्रोण भी है। तो इन्होंने कहा नहीं, शिव से बड़ा द्रोण होता है, वो बात सत्य थी, वो ये उसको काट नहीं सके। तो इन्होंने गुस्से में आके राजा ने आज्ञा दे दी, इन दोनों की आंखें निकाल दो। उन दोनों की आंखें निकाल ली गई। इतने बड़े उच्च कोटि के वैष्णवों पर अगर इतना बड़ा अपराध होगा तो करने वाला क्या सुखी रहेगा। कुछ ही दिन में उस राजा को गले में कीड़े पड़ने शुरू हो गए, उसके पूरे गले कीड़े कर्मी इतने हुए उसको कि वो कुछ ही दिन में बहुत तड़प तड़प के वो राजा मरा है। इधर रामानंदाचार्य जी तो पूरी अपनी दिग्विजय करने के बाद रंगनाथ जी गए, जो ऐसे राजा को देख करके वो छोड़ छाड़ के वहाँ से शैल पर्वत पे चले गए थे। एक और बड़ा अच्छा दृष्टांत है कि उनको एक आदेश हुआ एक बार कि भगवान का कि दिल्ली में जो बादशाह हैं उनके यहाँ पे ठाकुर जी हैं, यानी हम हैं, भगवान ने कहा आप हमें लेते जाइए आकर के और हमें प्रतिष्ठित कीजिए। तो ये बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग है, हम अगले पार्ट में इस प्रसंग को करेंगे, इसको करेंगे। और उनके एक धनुर्दास एक शिष्य थे, उन्होंने कितना समर्पण किया। एक वैष्णव थे जो अपने गुरुजी की सेवा के लिए उन्होंने क्या करा, अपना चरणों का चरणामृत तक भगवान को पिला दिया। तो ये कथा हम अगले पार्ट में करेंगे इनकी। तो ऐसे ही भगवान के भक्तों की कथाएँ हम करते रहें, आप सुनते रहें। जय जय श्री राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना ज़रूरी है।